I want to make some more comments about this, and then we'll have a time for question and answers.
अच्छा जो बात हमने इससे पहले की थी सुसमाचार पे आधारित आज्ञाकारिता की उसके विषय में मैं कुछ और टिप्पणियां करना चाहता हूँ फिर उसके बाद आप लोग के पास समय होगा प्रश्न उत्तर का ठीक है?
This is a very important subject.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है.
We're talking about the Christian and the law.
हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक मसीही की और व्यवस्था की.
What is the difference between legal obedience and gospel obedience?
वैधानिक या कानूनी आज्ञाकारिता और सुसमाचार पर आधारित आज्ञाकारिता में क्या भिन्नता है क्या फर्क है?
Gospel obedience is grounded in union with Christ.
सुसमाचार पर आधारित आज्ञाकारिता यीशु मसीह में एकता पर आधारित है.
It is initiated by faith, not by feeling.
वो विश्वास के द्वारा आरंभ किया जाता है भावनाओं के द्वारा नहीं.
It is powered by the Holy Spirit, not by the flesh.
इसके पास सामर्थ्य पवित्र आत्मा से आती है ना कि शरीर से.
It is motivated by love and grace, not fear.
ये प्रेम और अनुग्रह के द्वारा प्रेरित किया जाता है ना कि भय के द्वारा.
It is directed by commandment, not just your own opinion.
ये आज्ञाओं के द्वारा निर्देशित की जाती है ना कि स्वयं के विचारों के द्वारा.
And has as its goal to please God.
और इसका उद्देश्य होता है कि परमेश्वर की महिमा करे.
I want to make this plural right here. Commandments.
और यहाँ पे जो आज्ञा है उसको मैं बहुवचन में करना चाहता हूँ आज्ञाएं.
When we talk about the law of God, we don't just mean the Ten Commandments.
जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ एक दस आज्ञाओं से नहीं है.
We're talking about the commandments of the New Testament also.
हम नए नियम की आज्ञाओं के बारे में भी बात कर रहे हैं.
The commandments of Christ.
मसीह की आज्ञाएं.
And the commandments of the apostles.
और प्रेरित की आज्ञाएं.
Let's look in the Gospel of John.
आइए हम यूहन्ना की सुसमाचार में देख लें.
We're talking about the place of commandments in the Christian life.
हम मसीह जीवन में आज्ञाओं के स्थान को देख रहे हैं.
John chapter 15.
यूहन्ना का 15 अध्याय.
Well, let's start in chapter 14.
आइए हम लोग 14 अध्याय से शुरू करें.
Verse 21. He who has my commandments and keeps them is the one who loves me.
जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वो उनका पालन करता है वही मुझसे प्रेम करता है.
How is our love for God evidenced or expressed?
परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम कैसे प्रमाणित किया जाता है या दिखाई देता है?
By obedience to his commandments.
उसकी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता करने के द्वारा.
If a man says he loves God but doesn't obey God, he is deceived.
अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है तो फिर वो धोखा खाया हुआ व्यक्ति है.
Verse 23.
उसका 23वां पद.
If anyone loves me, he will keep my word.
यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो मेरे वचन का पालन करेगा.
My father will love him and come to him and abide with him.
और मेरे पिता उसे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे.
He that does not love me does not keep my word.
वो जो मुझसे प्रेम नहीं करता वो मेरे वचन का पालन नहीं करता.
Chapter 15.
15 अध्याय.
Verse 10.
उसका 10वां पद.
If you keep my commandments, you will abide in my love.
यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे.
Now he does not mean that obedience is a condition to be loved by God.
वो ये इसका ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि परमेश्वर से प्रेम करे जाने की शर्त ये है कि हम आज्ञाकारिता करें वो ये नहीं कह रहा है.
But obedience is a condition to be assured and abide in an assurance of the love of God.
लेकिन परमेश्वर के प्रेम के लिए आश्वासन निश्चयता और उसमें बने रहने के लिए आज्ञाकारिता एक शर्त अवश्य है.
Your obedience does not earn God's love.
आपकी आज्ञाकारिता परमेश्वर के पर प्रेम को नहीं खरीद लेती है.
But your obedience to commandments is the evidence of your love.
लेकिन आपके प्रेम का प्रमाण है उसकी आज्ञाओं का पालन करना.
And your obedience to commandments helps you stay in the assurance of God's love.
और जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वो ये इस बात को दिखाता है कि आप उसके प्रेम में बने हुए हैं.
Now write these two verses down.
और ये दो पदों को आप लिख लीजिए.
Romans chapter 8.
रोमियों का 8वां अध्याय.
at verse 39.
उसका 29वां पद, 39वां पद.
Nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.
मसीह यीशु के प्रेम से हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से हम मसीह यीशु में जो है कोई भी अलग नहीं कर सकता कुछ भी.
Now look in the book of Jude.
यहूदा की पत्री में देख लीजिए. यहूदा की पत्री.
Where is it, brother? Isn't it in Jude? Yes, verse
21.
Keep yourselves in the love of God.
अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो.
Now, are Paul and Jude contradicting one another?
क्या पौलुस और यहूदा एक दूसरे से विरोधाभास कर रहे हैं?
Paul said, "Nothing can separate us from the love of God."
Paulus कह रहा है परमेश्वर के प्रेम से हमको कोई अलग नहीं कर सकता.
Jude says, "Keep yourself in the love of God."
यहूदा कहता है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो.
What does Jude mean?
क्या यहूदा कहने का मतलब क्या है?
He's not saying that you have to keep your salvation by your obedience.
वो ये नहीं कह रहा कि तुमको अपना उद्धार को आज्ञाकारिता के द्वारा बनाए रखना, वो ये नहीं कह रहा है.
He's talking about remaining in a sense and assurance of the love of God.
वो कह रहा है कि परमेश्वर के प्रेम के आश्वासन में और उसकी पहचान में बने रहने की जरूरत है.
And how do you do that?
और कैसे कर सकते हैं आप ये चीज?
How do you keep yourself in the love of God?
आप परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को कैसे बना के रखे रह सकते हैं?
Three things.
तीन चीजें.
Verse 20.
बीसों पर देखिए यहाँ पे.
Number one.
पहली बात.
Build yourselves up on your holy faith.
अपने आप को अपने पवित्र विश्वास में गठ करो, बना लो.
Number two.
दूसरी बात.
Praying in the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो.
Number three.
तीसरी बात.
Verse 21.
21वां पद.
Looking anxiously for the mercy of our Lord Jesus.
और यीशु मसीह के आने के लिए उत्सुकतापूर्वक देखते रहो.
There's one command here.
एक आज्ञा यहाँ पे.
Keep yourself in the love of God.
अपने आप को मसीह के प्रेम बनाए, परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो.
Jude tells us how to do it.
और यहूदा हमको बताता भी कैसे करना है.
You stay in the Word of God.
तुम परमेश्वर के वचन बने रहो.
You study the truth of God.
तुम सत्य परमेश्वर के सत्य को पढ़ो.
You pray in the power of the Spirit of God.
और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में होकर के प्रार्थना करो.
You look for the mercy of God.
तुम परमेश्वर की दया की ओर देखो.
1 Thessalonians.
Pehla Thessalonico.
Jesus said, "If you love me, you will keep my commandments."
यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे, तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे.
And if you keep my commandments, you will abide in my love.
अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे.
If you want an assurance of God's love,
अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के प्रेम का आश्वासन आपके पास हो,
if you want security in your own Christian life,
अगर आप अपने स्वयं के जीवन में मसीह जीवन में सुरक्षा चाहते हैं,
one of the ways you grow in assurance is by your obedience.
और एक तरीका है अपने आश्वासन में बढ़ने का निश्चयता में, वो है आज्ञा पालन.
Your obedience cannot earn your salvation.
आपकी आज्ञाकारिता आपके उद्धार को, मुक्ति को नहीं पा सकती है.
But your obedience can increase your assurance.
लेकिन आपकी आज्ञाकारिता आपके निश्चयता को बढ़ा सकती है.
1 Thessalonians.
पहला थिस्सलुनीकियों.
Chapter 4.
और उसका चौथा अध्याय.
We read it this morning.
हमने आज की सुबह इसको पढ़ा था. पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा अध्याय.
If we want to please God, we must keep his commandments.
अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें उसकी आज्ञाओं को पालन करना है.
Verse 1.
पहला पद.
I told you how you ought to walk and please God.
मैं तुमको बताया था कि कैसे तुम्हें परमेश्वर की योग्य चाल चलना, जिससे तुम प्रभु के प्रसन्न कर सको.
And how did he tell them to walk?
और कैसे बताया उसने उनको चलने के लिए?
Verse 2.
दूसरा पद में बताया उसने.
I gave you commandments.
हमने तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं दी थी.
This tells you how to walk.
ये आज्ञाएं तुमको बताती हैं कैसे तुमको चलना है.
And if you walk in the commandments, you will please God.
और अगर तुम उसकी आज्ञाओं को पालन करोगे, तो तुम परमेश्वर को प्रसन्न करोगे.
What is the Christian's relationship to the law of God?
परमेश्वर की व्यवस्था से एक मसीह का क्या संबंध है?
It is the path of his obedience.
वो उसके आज्ञाकारिता का पथ है.
any questions?
कोई प्रश्न है इसके बारे में?
First John.
पहला यूहन्ना.
Chapter 3.
तीसरा अध्याय.
Look at verse 22 again.
यहाँ पे 22 पद को फिर से देख लीजिए.
Whatever we ask, we receive from Him.
हम जो कुछ मांगते हैं, हम उसे पाते हैं.
Why?
क्यों?
Because we keep His commandments, do the things pleasing in His sight.
क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, वही कार्य करते हैं जो उसकी दृष्टि में प्रिय हैं, उसको प्रसन्न हैं.
If we keep God's commandments, God is pleased.
जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, वो खुश होता है.
If we keep God's commandments, we will have close fellowship with God.
अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे, तो हमारी उससे नजदीकी संगति रहेगी.
Verse 24. If we keep God's commandments, we will abide in Him.
अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हम उसमें बने रहेंगे.
We will have fellowship with God.
हम उसके साथ हमारी उसकी संगति होगी.
We'll be assured of the love of God.
हमें परमेश्वर के प्रेम का आश्वासन मिलेगा.
We will have open access to God.
हमारे पास परमेश्वर के सामने सीधा रास्ता होगा.
And we will know the power of God.
और हम परमेश्वर के सामर्थ्य को जान सकेंगे.
So our obedience is directed by commandment.
तो हमारी आज्ञाकारिता आज्ञाओं के द्वारा ही निर्देशित होती है.
But the antinomian says our obedience is directed by the spirit.
लेकिन गैर व्यवस्थावाद पर व्यक्ति कहता है कि हमारी आज्ञाकारिता तो केवल आत्मा के द्वारा ही निर्देशित होती है.
They mistake the power for the regulation.
तो वे जो है सामर्थ को नियंत्रण से में भ्रमित कर देते हैं.
What is the power?
सामर्थ क्या है?
The Holy Spirit.
पवित्र आत्मा.
What is the regulation?
जो क्या चीज है जिसको नियंत्रित करती है?
The commandment.
वो है आज्ञाएं.
We run the way of His commandments.
हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पे ही दौड़ते हैं.
He enlarges our heart.
क्योंकि वो हमारे हृदय को बड़ा करता है.
Now this morning I said this is the main motivation.
आज की सुबह मैंने कहा कि ये आज्ञा ये प्रेम और अनुग्रह ही मुख्य प्रेरणा करने का सूत्र है.
But the antinomian says it's the only motivation.
लेकिन जो गैर व्यवस्थावाद व्यक्ति है वो कहता है कि ये तो सिर्फ यही एक है प्रेरणा का सूत्र.
But a proper understanding of the New Testament reveals multiple motivation.
लेकिन नए नियम की सही समझ हमको बताती है कि कई प्रेरणा के सूत्र हैं प्रेम के.
What are some of the motivations for the Christian's obedience?
एक मसीही की आज्ञाकारिता के लिए और क्या प्रेरणा के सूत्र होते हैं?
Have you ever thought about motivation?
क्या आपने कभी सोचा है प्रेरणा के बारे में?
Especially for preachers.
विशेष तौर से प्रचारकों के लिए.
If you are a preacher,
अगर आप प्रचारक हैं.
If you are a pastor,
और अगर आप पासवान हैं.
If you are a teacher in the church,
और अगर आप कलीसिया में शिक्षक हैं.
You have a special stewardship.
तो आपके सामने एक विशेष भंडारीपन है.
And you should have multiple motivation.
और आपके सामने कई प्रेरणा होनी चाहिए.
Look in 2 Corinthians.
दूसरा कुरिन्थियों में देख लीजिए मेरे साथ.
Chapter 5.
पांचवा अध्याय. दूसरा कुरिन्थियों उसका पांचवा अध्याय.
Verse 14.
उसका 14 पद.
What motivation is there?
क्या है यहाँ पे प्रेरणा? यहाँ पे प्रेरणा का सूत्र.
Look at verse 14.
यहाँ पे देखिए 14 पद.
What's the motivation?
क्या है यहाँ पे प्रेरणा का कारण?
The love of Christ controls us.
मसीह का प्रेम हमें विवश करता है.
And how is that love revealed?
और वो कैसे प्रदर्शित होता है, प्रकाशित होता है ये प्रेम?
One died for all.
कि एक जो है सबके लिए मर गया.
Verse 15.
15 पद.
He died for all, so they live not live for themselves.
वो सबके लिए मर गया ताकि वे लोग जो जीवित हैं वो अपने लिए ना जिएं.
But they live for the one who died and rose again on their behalf.
लेकिन वो उसके लिए जो जिएं जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा.
This is our highest motivation.
ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का सूत्र है.
He loves us.
वो हमसे प्रेम करता है.
He died for us.
वो हमारे लिए मर गया.
He forgives us.
वो हमको क्षमा करता है.
He redeemed us.
उसने हमको छुड़ाया है.
He satisfied God's wrath.
उसने परमेश्वर के क्रोध को शांत किया हमारे बदले.
He took upon himself our sins.
उसने अपने ऊपर हमारे पापों को ले लिया.
And we understand that love.
और अब हम उस प्रेम को समझते हैं.
Not our love for God.
हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए नहीं.
But God's love for us.
लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए.
And that moves us.
और फिर वो हमको बाधित
that
करता
motivates
है.
Us.
और वही हमको प्रेरित करता है.
That controls
और वही हमको नियंत्रित करता है.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान से इस बात.
Sometimes it does not always hold us.
लेकिन कभी कभी वो हमको हमेशा पूरी तरह से पकड़ के नहीं रख पाता है.
What do we mean?
तो मेरा कहने का क्या मतलब है?
Some people know God loves them.
कई लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है.
They know Christ died for them.
वो जानते हैं कि यीशु मसीह उनके लिए मर गया.
They know they're forgiven.
उनको मालूम है कि वो उनके पाप क्षमा हो गए.
But they fall into sin anyway.
लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो पाप में गिरते रहते हैं.
And that love doesn't hold them.
और वो प्रेम है उनको बाधित नहीं करता है.
Listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
The love of God is our highest motivation.
परमेश्वर का प्रेम हमारा सबसे सर्वोच्च प्रेरणा का सूत्र है.
Our strong motivation.
हमारा सबसे दृढ़ प्रेरणा का सूत्र है.
But it is not our only motivation.
लेकिन सिर्फ वही हमारा एकमात्र प्रेरणा का सूत्र नहीं है.
Sometimes men run right over the love of God.
और कभी कभी लोग जो हैं परमेश्वर के प्रेम के ऊपर भागते हुए चले जाते हैं.
And they run right into sin.
और फिर परमेश्वर के प्रेम को गिरा करके वो सीधे पाप में घुस जाते हैं.
The love of God is like a wall around them.
परमेश्वर का प्रेम एक दीवार के समान है उनके चारों तरफ.
And it keeps them from sin.
और वो उनको पाप से रोकता है.
But that wall is like tissue paper. Tissue paper.
लेकिन वो जो परमेश्वर का प्रेम का जो दीवार है वो बड़े ही हल्के से पेपर से बनी हुई है. बहुत हल्के कागज से बनी हुई है.
Very sensitive.
और बहुत ही संवेदनशील है.
And a man can break through it.
और एक आदमी जो है उस दीवार को आराम से तोड़ सकता है क्योंकि वो हल्का हल्की दीवार है.
And run into sin.
और फिर पाप की ओर भाग जाता है.
Sin becomes so strong.
क्योंकि पाप इतना मजबूत बन गया है.
The temptation is so great.
वो प्रलोभन इतना बड़ा है.
The lust is so deep.
वो वासना इतनी गहरी है.
I know God loves me.
मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है.
But I can't help myself.
लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूं.
There's another wall.
एक और दीवार है हमारे चारों तरफ. परमेश्वर के प्रेम के अलावा एक और दीवार है हमारे चारों तरफ, विश्वासी के चारों तरफ.
The first wall is the love of God.
पहली दीवार है परमेश्वर का प्रेम.
It's a sensitive thing.
वो बहुत ही संवेदनशील वस्तु है.
And you can run right through it into sin.
और आप उस दीवार में होते उस दीवार से होकर के पाप में जा सकते हैं.
But there's another wall.
लेकिन हमारे चारों तरफ एक और दीवार है परमेश्वर
की. A bigger wall.
और वो बड़ी दीवार है.
A higher wall.
और बहुत ऊंची दीवार है.
A stronger wall.
और वो मजबूत दीवार है.
It's made not out of paper.
वो कागज की बनी नहीं है.
It's made out of stone.
लेकिन वो पत्थर की बनी हुई है.
And what is that wall?
और कौन सी है वो दीवार?
Look in chapter 5.
पांचवें अध्याय में देख लीजिए. दूसरा ग्रंथियों का पांचवें अध्याय. दूसरा ग्रंथियों का पांचवें अध्याय.
Verse 11.
उसका 11 पद.
What motivation is this?
कौन सा है यहाँ पे प्रेरणा का सूत्र? कौन सा है यहाँ पे प्रेरणा का सूत्र? हाँ?
The fear of the Lord.
परमेश्वर का भय.
Let me ask you a question.
मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ.
Should the Christian fear God?
क्या एक मसीह को परमेश्वर का भय होना चाहिए?
John says, perfect love cast out fear.
यूहन्ना तो कहता है कि सिद्ध प्रेम जो है हमारे में से भय निकाल देता है.
And he that fears has not been perfected in love.
और वो जो भय करता है वो सिद्धता में बनाया नहीं गया है.
Should a Christian fear God?
क्या एक मसीह को परमेश्वर से भय मखाना चाहिए?
Listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को.
There are two kinds of fear in the New Testament.
नए नियम में दो प्रकार के भय हैं.
There's the fear of a slave and the fear of a son.
एक दास का भय है और एक पुत्र का भय. दो तरह के भय. एक दास का भय और एक पुत्र का भय.
There's a fear that involves punishment.
और एक ऐसा भय जिसमें सजा शामिल होती है.
And there's a fear that involves discipline.
और एक ऐसा भय जिसमें अनुशासन शामिल होता है.
the punishment of a master and the discipline of a father.
एक स्वामी एक मालिक की सजा और एक पिता की का अनुशासन.
God has delivered us from this fear.
परमेश्वर ने हमको एक मालिक के सजा के भय से छुड़ा दिया है.
We don't fear punishment.
अब हमें सजा का डर नहीं है परमेश्वर से.
We don't fear the judgment of God.
अब हम परमेश्वर के न्याय से नहीं डरते.
We don't fear the wrath of God.
अब हम परमेश्वर के क्रोध से नहीं डरते.
We have been redeemed.
क्योंकि अब हम छुड़ा लिए गए हैं.
He suffered the wrath for us.
क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए उस प्रकोप का सामना कर लिया है.
He loves us.
वो हमसे प्रेम करता है.
He forgives us.
उसने हमको क्षमा कर दिया.
He cares for us.
वो हमारे चिंता करता है.
He's no longer a hard task. He's not a hard task master.
और अब वो एक बहुत ही कठोर कार्य कराने वाला स्वामी नहीं है.
He's a loving father.
किंतु अब एक वो प्रेमी पिता है.
The Bible talks about a second kind of fear.
और परमेश्वर का वचन एक दूसरे तरह के भय के बारे में बात करता है.
The fear of a son.
एक पुत्र का भय.
He doesn't want to displease his father.
ऐसा भय जो पुत्र अपने पिता को नाखुश नहीं करना चाहता.
He doesn't want to have the father's discipline.
वो नहीं चाहता कि उसका पिता उसको अनुशासित करे.
Now look at verse 11.
और देखिए यहाँ पे 11 पद को.
He's talking about preachers.
और ये प्रचारकों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे दूसरा ग्रंथ 5:11 पद में.
What produces this fear of God?
क्या चीज है जो परमेश्वर के भय को उत्पन्न करती है?
Look at verse 10.
दस पद को देखिए.
Verse 11 is based upon verse 10.
और जो 11 पद है वो 10 पद पे आधारित है.
Paul says verse 11, therefore or on account of this.
पौलुस कहता है अतः इसलिए या इसकी वजह से.
And he's pointing back to verse 10.
वो पीछे के 10वें पद की ओर लेकर के जा रहा है.
And what does verse 10 say?
और वो क्या कह रहा है 10वां पद?
We all must stand before the judgment seat of Christ.
हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना है.
So that each will be rewarded for his deeds according to what he's done, whether good or bad.
कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला ले.
Now this is not a judgment for salvation.
और ये जो 10वें पद में जो न्याय है ये उद्धार के समक्ष उद्धार के लिए न्याय नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा है.
This is not a judgment for our sin.
ये हमारे पाप के लिए न्याय की बात नहीं कर रहा है.
This is not a judgment for our justification.
ये हमारे धर्मी ठहरा दिए जाने के लिए न्याय के बारे में बात नहीं कर रहा
है. Where was our sin judged?
हमारे पापों का न्याय कहां पे हो गया है?
On the cross.
क्रूस के ऊपर हमारे पापों का न्याय हो चुका है.
We are forgiven for our sin.
हमारे पापों के लिए हमें क्षमा मिल चुकी है.
But Paul says we must all stand before the judgment seat of Christ.
लेकिन पौलुस फिर भी कहता है कि हम सबको परमेश्वर के यीशु मसीह के न्याय के शासन आसन के सामने खड़ा होना होगा.
And judge for what?
और किस लिए हमारा न्याय होगा उसके न्याय के आसन के सामने?
Our ministry.
हमारी सेवकाई के लिए.
Our stewardship.
हमारी भंडारीपन के लिए.
Our responsibility.
हमारी जिम्मेदारियों के लिए.
Our faithfulness.
हमारे विश्वास योग्यता के
our
लिए.
Our fruit.
हमारे फल के लिए.
Not for our salvation.
हमारे उद्धार के लिए नहीं.
But for our reward.
लेकिन हमारे पुरस्कार के लिए.
This is not the only motivation.
केवल यही नहीं है हमारा प्रेरणा का सूत्र.
Especially for preachers.
विशेष तौर से प्रचारकों के लिए.
Look in 1 Corinthians.
लेके पहले कुरिन्थियों में देख लीजिए.
We're talking about motivation.
हम बात कर रहे हैं कौन सी चीजें जो हमें प्रेरित करती हैं.
This is the great motivation.
परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह सबसे बड़ा प्रमुख प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए.
But there's another motivation.
लेकिन उसके अलावा भी एक और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है.
1 Corinthians and chapter 3.
पहले कुरिन्थियों का तीसरा अध्याय.
Verse 10.
और उसका 10वां पद.
According to the grace of God, as a builder, I laid a foundation.
परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार जो मुझे प्रदान किया गया मैंने कुछ राजमिस्त्री की भांति नींव डाली.
But another is building upon it.
और दूसरा उस पर रद्दा रखता है.
But let him be careful how he builds.
परंतु प्रत्येक व्यक्ति सावधान है कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है.
For no man can lay a foundation except Christ Jesus.
क्योंकि उस नींव को छोड़ के जो पड़ी है वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव कोई आदमी नहीं डाल सकता.
If a man builds with gold, silver, precious stones, he does well.
यदि कोई मनुष्य इस नींव पर सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर काट के घासों से निर्माण करे तो अच्छा करता है.
If he builds with wood, hay and stubble, It will be burned up.
लेकिन अगर वो काट के घास फूस से निर्माण करेगा तो फिर वो जल जाएगा.
Each man's work will become evident.
और हर एक व्यक्ति का कार्य प्रकट किया जाएगा.
Verse 14.
14 पद.
When a man's work remains, he will receive a reward.
और जब किसी व्यक्ति का कार्य बचा रहेगा, स्थिर रहेगा, तो उसे प्रतिफल मिलेगा.
When a man's work is burned up, he will suffer loss.
किसी व्यक्ति का कार्य जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा.
But he will be saved yet through fire.
लेकिन वो खुद तो बच जाएगा, स्वयं तो बच जाएगा, लेकिन फिर भी आग से जलते हुए मानो.
Now who's Paul talking to?
यहाँ पे पॉलस किससे बात कर रहा है?
He's talking to you.
आपसे बात कर रहा है.
And you.
आपसे बात कर रहा है.
And you.
और आपसे बात कर
रहा है. If you're a preacher.
अगर आप प्रचारक
हैं. If you're a pastor.
अगर आप पास्टर
हैं. Teacher,
अगर आप शिक्षक हैं,
he's talking to you,
तो वो आपसे बात कर रहा है,
and he's talking to me,
तो वो मुझसे बात कर रहा है,
and he says, let a man be careful how he builds,
तो वो कहता है कि एक व्यक्ति को सावधान रहने की वो कैसे निर्माण कर रहा है,
he must have the right foundation,
उसके पास सही बुनियाद होनी चाहिए,
and he must build with the right material,
और उसको सही सामग्री का उपयोग करना चाहिए,
and he must build according to the proper plan,
और उसको सही योजना के अनुसार निर्माण करना चाहिए,
what is the foundation,
और नींव क्या है,
Jesus Christ in his gospel.
यीशु मसीह और उसका सुसमाचार.
What is the proper material?
और वो सही सामग्री क्या है?
The word of God.
परमेश्वर का वचन.
True holiness.
सच्ची पवित्रता.
Prayer.
प्रार्थना.
These are the proper material.
ये है सही सामग्रियां.
What is the plan?
और योजना क्या है?
The word of God.
परमेश्वर का वचन.
Not according to man.
मनुष्य के अनुसार नहीं.
But according to the word of God.
लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार.
One day the fire is going to fall.
क्योंकि एक दिन परमेश्वर का आग आएगा.
And if it's not gold, silver, precious stones, it will be burned up.
और अगर वो पत्थर, बहुमूल्य पत्थर और सोना चांदी नहीं है, तो वो सब कुछ जल जाएगा.
So Paul says this.
तो पौलुस ये बात कहता है.
You're going to stand before Christ.
तुम मसीह के सामने खड़े होगे.
You're going to give an account for your ministry.
तुम अपनी सेवा के लिए एक हिसाब दोगे.
You better build with the right material.
इसलिए तुम सही सामग्री के साथ अपनी सेवा करते
हो. On the right foundation.
और तुम सही नींव के ऊपर अपना निर्माण करो.
You better build in the right way.
और तुम सही तरीके से निर्माण करो.
You better build for the right purpose.
और तुम सही उद्देश्य के लिए निर्माण करो.
Christ is the foundation.
मसीह है जो नींव है.
The word of God is the plan.
परमेश्वर का वचन है जो योजना है.
The glory of God is the purpose.
और परमेश्वर की महिमा ही है जो उद्देश्य है.
And holy life is the material.
और पवित्र जीवन ही है जो उसकी सामग्री है जिससे निर्माण किया जाएगा.
Therefore,
इसलिए, अतः,
knowing the fear of the Lord,
परमेश्वर का भय मानते हुए, जानते हुए.
What's he talking about?
किस चीज की बात कर रहे हैं यहां पे ये?
When you realize one day you will stand before Christ,
जब आप ये बात जान जाते हैं कि एक दिन आप मसीह के सामने खड़े होंगे,
be judged for your life and ministry,
और आप अपने जीवन और अपनी सेवा के लिए आपका न्याय होगा,
not for your salvation,
अपने उद्धार के लिए नहीं,
not for your justification,
अपने धर्मी ठहराए जाने के लिए,
that was judged on the cross,
वो तो क्रूस पर उसका न्याय हो चुका है,
but for your ministry,
लेकिन आपकी सेवा के
your faithfulness,
आपके विश्वास योग्यता,
your motive,
आपके उद्देश्यों के,
you will be judged,
आपका न्याय होगा,
and you will suffer loss,
और फिर आप नुकसान उठाएंगे,
or you will receive a reward,
या तो फिर आप परमेश्वर से प्रतिफल पाएंगे.
Paul says this,
परमेश्वर पौलुस ये कहता है,
when I realize one day I'll stand before Christ,
और जब मैं ये जानता हूँ कि एक दिन मैं परमेश्वर मसीह के सामने खड़ा होऊंगा,
I have a holy fear of God,
मेरे दिल में परमेश्वर के लेकर के एक पवित्र भय है,
not for judgment,
न्याय के लिए नहीं,
but to examine my ministry,
लेकिन अपनी सेवा की जांच करने के लिए, परखने के लिए.
And so in 2 Timothy chapter 4,
इसलिए दूसरे तीमोथियुस उसके चौथे अध्याय में,
Paul says, preach the word.
पौलुस कहता है कि परमेश्वर का वचन प्रचार कर.
Remembering two things.
और दो चीजों को याद रखो.
I charge you in the presence of God.
मैं परमेश्वर के उपस्थिति को जानते हुए तुम्हें ये आदेश देता हूँ.
Number two.
दूसरी बात.
And of Christ Jesus who's coming to judge the living and the dead.
और वो मसीह यीशु जो मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आने वाला है.
Preach the word.
परमेश्वर का वचन प्रचार करो.
Remembering two things.
दो चीजों को याद रखो.
God is watching.
परमेश्वर देख रहा है.
God is listening.
परमेश्वर सुन रहा है.
God is looking.
परमेश्वर देख रहा है.
And one day,
और एक दिन,
you will stand before Christ.
आप मसीह के सामने खड़े होंगे.
When you preach the word of God.
और जब आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे.
Think about the eye of man.
तो आप लोगों की आंखों के बारे में मत सोचिए.
Think about the eye of God.
आप परमेश्वर की आंखों के बारे में सोचिए.
Don't think about the judgment of man.
आप मनुष्य के न्याय के बारे में मत सोचिए.
Think about the judgment of God.
लेकिन आप परमेश्वर के न्याय के बारे में सोचिए.
James,
याकूब,
chapter 3,
तीसरा अध्याय,
and verse 10,
और दसवां पद.
I've mentioned it many times in this room.
इस कमरे में कई बार आपको बताया है याकूब 3:10 अध्याय.
Every preacher should memorize that verse.
सारे प्रचारकों को ये पद को याद करने दे. याकूब 3:10.
Did I say verse 1?
No, 3:10.
Verse 1. 3 yeah. verse 1.
याकूब 3:1. 10 नहीं. याकूब 3:1. याकूब 3:1. इसको हमें याद कर लेना है.
What does that verse say?
क्या कह रहा है ये पद? क्या कह रहा है ये पद?
Let not many of you be teachers.
तुम में से बहुत लोग शिक्षक ना बने.
Why?
क्यों?
Because you will have a stricter judgment.
क्योंकि आप लोग का हम लोग का एक और भी कठोरतम दंड होगा.
Did you hear that?
क्या आपने सुना इस बात को?
You want to preach?
प्रचार करना चाहते हैं?
You want to teach?
सिखाना चाहते हैं?
You want a pastor?
पास्टर बनना चाहते हैं?
You want to stand in this place?
इस जगह पे खड़े होना चाहते हैं?
Listen carefully.
ध्यान से इस बात.
You stand in this place?
आप इस जगह पे खड़े होंगे?
God is watching.
परमेश्वर आपको देख रहा है.
God is listening.
परमेश्वर आपको सुन रहा है.
God is looking.
परमेश्वर आपको देख रहा है.
And one day,
और एक दिन,
you'll stand before Christ.
आप मसीह के सामने खड़े होंगे.
And you're going to have a stricter judgment.
और आपका एक बहुत ही कठोर न्याय होगा.
Not for your salvation.
आपके उद्धार की भांति के लिए नहीं.
But for your ministry.
लेकिन आपकी सेवकाई के लिए.
As I told you before.
मैंने आपको पहले ही बताया इस बात को.
Many men come to this pulpit.
और बहुत सारे आदमी लोग इस पुलपिट पे आते हैं.
Amen. How should you come to this pulpit?
कैसे आना चाहिए आपको इस पुलपिट के ऊपर?
You should crawl.
आपको रेंगते हुए आना चाहिए.
Pray in every step.
हर एक कदम पर आपको प्रार्थना करना चाहिए.
Help me, Lord.
प्रभु मेरी सहायता करिए.
Help me, Lord.
प्रभु मेरी सहायता करिए.
Help me, Lord.
प्रभु मेरी सहायता करिए.
This is a holy place.
ये एक पवित्र स्थान है.
This is a place of judgment.
ये एक न्याय की जगह है.
God is here.
परमेश्वर यहाँ पे है.
God is listening.
परमेश्वर सुन रहा है.
God is watching.
परमेश्वर देख रहा है.
Yes, we are to be motivated by the love of God.
हाँ, हमें परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्रेरित होना चाहिए.
But it's a short wall.
लेकिन वो बहुत ही छोटी दीवार है.
And you can break through it.
और आप उस दीवार से कूद सकते हैं.
But there's another wall.
लेकिन आपके चारों तरफ एक और बड़ी दीवार है, एक ऊंची दीवार है,
a stronger wall.
एक मजबूत दीवार है.
And it's made out of stone.
और वो पत्थर की बनी हुई है.
And what is that wall?
और वो कौन सी दीवार है?
The fear of God.
वो परमेश्वर का भय की दीवार है.
And when you hit that wall,
और जब आप उस दीवार से भिड़ते हैं,
when the love of God will not hold you, the fear of God will.
जब परमेश्वर का प्रेम आपको नहीं रोकेगा, तो परमेश्वर का भय आपको अवश्य रोकेगा.
And that's not legalism.
और ये कानूनवाद नहीं है, व्यवस्थावाद नहीं है.
That's biblical motivation.
लेकिन ये बाइबल पर आधारित प्रेरणा का सूत्र है.
You understand what we're saying?
क्या आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं?
What's another motivation?
और कौन सा ऐसा प्रेरणा का सूत्र है?
To please God.
परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए.
We have as our ambition to please God.
ये हमारा एक मनसा उद्देश्य होता है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें.
That motivates us.
और वो हमको प्रेरित करता है.
I want to please my heavenly Father.
मैं अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करना चाहता हूँ.
I want him to be happy with me.
मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे खुश रहे.
Now when a man is walking in the fear of God.
और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के भय में चलता होता है,
he's thinking about two things.
तो वो दो बातों के बारे में सोचता होता है.
The present discipline of God.
परमेश्वर का वर्तमान में अनुशासन.
And the future judgment of his ministry.
और वो भविष्य में परमेश्वर के द्वारा उसकी सेवकाई के न्याय के बारे में सोचता रहता है.
That's what it means to walk in the fear of God.
और परमेश्वर के भय में चलने का मतलब ये हुआ.
But people don't like to hear that.
और लोग ये बात सुनना नहीं चाहते हैं.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान से सुनिए इस बात को.
If you're a preacher,
अगर आप एक प्रचारक हैं,
if you stand in this place,
और अगर आप इस स्थान पे खड़े होंगे,
if you open this book,
और अगर आप इस पुस्तक को खोलेंगे,
if you open your mouth,
अपने मुख को खोलेंगे आप,
there's a stricter judgment,
और एक बहुत ही कठोर न्याय है आपके लिए आगे.
You understand what we're saying and what we're not saying.
आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं और हम क्या नहीं कह रहे हैं.
We're not talking about salvation.
हम उद्धार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं.
Look in 1 Corinthians again.
पहले कुरिन्थियों में फिर से देख लीजिए मेरे साथ.
Chapter 4.
चौथा अध्याय.
Verse 1.
पहला पद. पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय पहला पद.
The identity of the preacher.
एक प्रचारक की पहचान.
What is he?
कौन है एक प्रचारक?
Two things.
दो चीजें हैं वो.
He's a servant of Christ.
वो मसीह का सेवक है.
He's not a servant of man.
वो मनुष्य का सेवक नहीं है.
He's not a servant of himself.
वो स्वयं का सेवक नहीं है.
He's a servant of Christ.
वो मसीह का सेवक है.
Number two.
दूसरी बात.
He is a steward of the mystery of God.
वो रहस्यों का भंडारी है.
What is a steward?
वो परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी. भंडारी
has been entrusted with a responsibility.
एक भंडारी के पास जिम्मेदारियां दी जाती हैं.
Something has been given.
उसको कोई चीजें दी गई हैं और उन चीजों को उसको सुरक्षित रखना है.
Properly use it.
और उन चीजों को उसको कायदे से इस्तेमाल करना उसे.
It doesn't belong to him.
वो चीजें उसकी स्वयं की नहीं हैं.
God has given the preacher a stewardship.
लेकिन परमेश्वर ने एक प्रचारक को एक भंडारीपन दिया है.
What is the identity of the preacher?
एक प्रचारक की पहचान क्या है?
Servant of Christ.
परमेश्वर मसीह का सेवक.
Steward of the mystery of God.
लेकिन परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी.
Verse 2.
दूसरा पद.
What is the requirement of the preacher?
और एक प्रचारक के से क्या मांगे, क्या आवश्यकता है, होना क्या चाहिए उसके अंदर?
Is that it to be intelligent?
और क्या वो ये कह रहा है कि एक सेवक को बहुत अकलमंद होना चाहिए?
Is it that it be gifted?
क्या कह रहा है कि उसके पास बहुत सारे वरदान होने चाहिए?
Is that it be graduate from Bible school?
कि उसको बाइबल स्कूल से पढ़ के निकलना चाहिए?
What is the requirement?
क्या है या उसकी आवश्यकता क्या होनी चाहिए उसके अंदर?
Faithfulness.
विश्वास योग्यता.
He faithfully fulfills his duty.
कि वो अपनी जिम्मेदारी को विश्वास योग्यता के साथ पूरा करे.
God gives him something precious.
परमेश्वर ने उसको कुछ बहुत ही बहुमूल दिया है.
Salvation.
उद्धार.
The gospel.
सुसमाचार.
The word of God.
परमेश्वर का वचन.
The ministry.
सेवकाई.
A spiritual gift.
आत्मिक वरदान.
And he must use it faithfully.
और उसे इनको विश्वास योग्यता के साथ उपयोग करना है इनका.
God not going to judge you so much on how much you produce, but how you do it.
परमेश्वर आपको इसलिए नहीं न्याय करेगा कि आपने कितना उत्पन्न किया है, लेकिन इसलिए न्याय करेगा कि आपने कैसे उत्पन्न किया.
The results are God's.
और जो परिणाम है, क्योंकि वो तो परमेश्वर के
हैं. The faithfulness must be yours.
लेकिन आपकी विश्वास योग्यता होनी चाहिए.
Look in verse 3.
यहाँ पे देख लीजिए तीसरे पद में देखिए क्या कहता है.
The proper judgment of preachers.
एक प्रचारक का सही न्याय.
Verse 3 and 4.
तीसरा और चौथा पद.
Self judgment is not accurate.
स्वयं का न्याय करना सही नहीं होता है. स्वयं का न्याय करना सही नहीं होता है.
Human judgment is not accurate.
मानवीय न्याय भी सही नहीं होता है.
Verse 3.
और तीसरा पद.
A small thing that I'm examined by you or any human court.
ये बहुत छोटी बात है कि कोई तुम या कोई मानवीय न्यायालय मेरा न्याय करे.
I don't even examine myself.
मैं तो स्वयं अपना न्याय नहीं करता.
Why?
क्यों?
Because my examination is limited.
क्योंकि मेरा स्वयं का जांच करना बड़ा ही सीमित है.
I can't see into my own heart.
क्योंकि मैं अपने स्वयं के हृदय में भी नहीं देख सकता.
I don't know my deepest motives.
क्योंकि मैं अपनी गहरी मनसाओं को नहीं जान पाता.
Your examination is not enough.
और तुम्हारा भी मेरा न्याय करना काफी नहीं है.
You can't see into my heart.
क्योंकि तुम मेरे हृदय के अंदर नहीं
you
देख सकते.
You can't see my motive.
क्योंकि तुम मेरी मनसाओं को नहीं जान सकते.
When is the proper judgment of the preacher's ministry?
एक प्रचारक की सेवकाई का सही मायने में न्याय कब होता है?
Verse 5.
पांचवें पद में.
Don't go on passing judgment before the time.
इसलिए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो.
But wait until the Lord comes.
और लेकिन प्रभु के ना आए तब तक ठहरे रहो.
And when He comes, what will happen?
और जब वो आएगा तो फिर क्या होगा?
Two things.
दो चीजें होंगी.
Number one.
पहली बात.
He will bring to light the things hidden in the darkness.
और जो चीजें अंधकार में छिपी हुई उनको वो प्रकाश में लेकर के आएगा.
Where no one else sees.
और जो चीजें दूसरे लोग नहीं देख सकते.
Where no one else is around.
जब दूसरे लोग आसपास
नहीं हैं. Where no one else knows.
और जो बातें लोग नहीं जानते हैं.
It will be revealed.
वो परमेश्वर के सामने प्रकाशित की जाएंगी.
But the judgment will go deeper than that.
और लेकिन न्याय तो उससे भी और गहरा जाएगा.
Verse 5.
पांचवें पद में देखिए.
Number 2.
और दूसरी बात.
He will disclose the thoughts or the motives of men's heart.
वो तो मनुष्यों के मनोभावनाओं या इच्छाओं को या मनसाओं को सामने लाकर के रख देगा.
And then every man will have his praise from God.
और फिर उसके बाद हर एक मनुष्य की प्रशंसा परमेश्वर की ओर से होगी.
Now I've asked you this before.
मैंने आपसे ये प्रश्न पहले भी पूछा है.
Do you ever think about this?
क्या आप इस बात के बारे में कभी सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं?
Many preachers never think about this.
बहुत सारे प्रचारक लोग कभी इसके बारे में आपस में सोचते ही नहीं है.
Now I'm not talking about the poor weak sister sitting in the back of the church.
मैं कलीसिया में पीछे जो एक बेचारी कमजोर बहन बैठी उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं.
I'm talking about the preachers.
मैं बात कर रहा हूँ प्रचारकों के बारे में.
And the teachers.
और शिक्षकों के बारे में.
And the young preachers.
और जवान प्रचारकों के बारे में.
And the pastors.
और पासवानों के बारे में.
And the evangelists.
और जो सुसमाचार प्रचार का काम करते हैं.
That's who Paul is talking about.
उन लोगों से पौलुस बात कर रहा है.
And he says, therefore.
और वो वहां पे पौलुस कहता है इसलिए.
Knowing the fear of the Lord.
परमेश्वर के भय को जानते हुए.
We preach.
हम प्रचार करते हैं.
The love of God.
परमेश्वर का प्रेम.
The grace of God.
परमेश्वर का अनुग्रह.
The fear of God.
परमेश्वर का भय.
The discipline of God.
परमेश्वर का अनुशासन.
The judgment of our ministry.
हमारे सेविकाए का न्याय.
Most people don't like to hear that.
बहुत सारे लोग इस बात को सुनना नहीं चाहते.
Oh, that sounds legalistic.
अरे ये तो कानूनवाद जैसा सुनाई देता है.
That's not grace.
ये तो अनुग्रह की बात नहीं हुई.
That's not love.
ये तो प्रेम की बात नहीं हुई.
We've been forgiven.
अरे हमें तो क्षमा कर दिया गया है.
God's not going to judge us.
अब परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करेगा.
What does Paul say?
लेकिन पौलुस यहाँ पे क्या
कहता है? What does James say?
तो याकूब क्या कहता है?
Knowing the fear of the Lord.
परमेश्वर के भय को जानना.
We preach the truth.
और उसको जानते हुए हम सत्य का प्रचार करते हैं.
Now, are there any questions on this point?
और क्या अब आपके सामने कोई प्रश्न है इस विषय के बारे में जो हमने अभी तक बात किया है?
The place, the definition of commandments.
और आज्ञाओं की परिभाषा और स्थान.
And the place of commandments in the believer's life.
और विश्वासियों के जीवन में आज्ञाओं का स्थान.
Is there any question on this point?
कोई प्रश्न तो नहीं है आपके पास इस विषय में?
Motivation.
हमारे प्रेरणा का सूत्र.
Now there are other motivations.
और भी कई प्रेरणा के कारण हो सकते हैं.
If I gave you some homework tonight,
अगर मैं आपको आज की रात के लिए कुछ गृह कार्य दूं,
and I told you to go to your room and write down in the New Testament the different motivations.
और मैं अगर आपसे कहूं अपने कमरे में जाइए रात में और अपनी किताब में लिखिए नए नियम में के अनुसार कौन कौन से प्रेरणा के सूत्र हैं.
How many could you write?
हम कितने लिख सकते हैं आप भी बताइए.
There's more than two or three.
और दो या तीन से भी ज्यादा प्रेरणा के
सूत्र. Not just the love of God.
केवल परमेश्वर का प्रेम नहीं.
Not just the fear of God.
केवल परमेश्वर का भय.
Not just to please God.
ना सिर्फ केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना.
There are other motivations.
और भी कई प्रेरणा के स्रोत हैं.
Do you know what they are?
क्या आप जानते हैं कौन है क्यों
God है, हमें करना uses चाहिए? Different motivations to prompt and move his children.
परमेश्वर जो है अलग अलग तरह के स्रोतों को इस्तेमाल करता है हमें प्रेरित कर अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए सुषमाचार पर आधारित आगे कार्य के लिए.
This is the main one.
और किंतु प्रेम और अनुग्रह सबसे मुख्य है.
But that's not the only one.
लेकिन सिर्फ वही काफी नहीं है केवल वही नहीं है.
So I want to give you an assignment.
मैं आपको एक कार्य देना चाहता हूं.
I want you to take 10 minutes.
मैं चाहता हूं कि आप 10 मिनट लीजिए.
And I want you to write down these three motivations.
मैं चाहता हूं कि आप इन तीन प्रेरणाओं को लिख लीजिए.
The love of God.
परमेश्वर का प्रेम.
The fear of God.
परमेश्वर का भय.
And to please God.
और परमेश्वर को प्रसन्न करना. कौन कौन सी बातें हैं जो आपको प्रेरित करती हैं सुसमाचार पे आधारित आज्ञाकारिता के लिए?
Then I want you to write down at least three more.
और तीन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का भय और परमेश्वर को प्रेरित करना, उसके परमेश्वर को प्रसन्न करना. उसके अलावा तीन और बातें मैं चाहता हूँ कि आप लिखें. कौन सी वो तीन बातें जो आपको प्रेरित करती हैं सुसमाचार पे आधारित आज्ञाकारिता को करने के लिए?
And then show me the verses.
और फिर आप हमको ना सिर्फ लिखेंगे लेकिन हमको बताएंगे कहाँ पाई जाती है बाइबल में, तो हमको पद दीजिए वाले.
You understand what I'm asking?
आप समझ रहे हैं हमसे कह क्या रहे हैं? बात समझ रहे? नहीं समझ रहे?
Any question?
कोई प्रश्न है? प्रश्न के बारे में कोई प्रश्न समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ आया प्रश्न क्या है? किसी को नहीं समझ आया प्रश्न क्या है? सबके समझ में आ गया प्रश्न क्या है? सबके समझ में आ गया प्रश्न क्या है? एक बार फिर से बोल दें, एक बार फिर से बोल देते हैं. सुसमाचार पर आधारित आज्ञाकारिता क्या प्रेरणा, क्यों हम सुसमाचार पर आधारित आज्ञाकारिता करते हैं, क्यों हम आज्ञा पालन करते हैं? ठीक है, तीन मुख्य कारण इन्होंने बताए. सबसे पहला कारण है परमेश्वर का प्रेम. क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, सबसे पहली बात. दूसरी बात, क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते हैं इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं. ठीक है, तीसरी बात, क्योंकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं. तो ये तीन बातें तो इन्होंने बताई. क्या आप तीन और बातें बता सकते हैं जो नए नियम में पाई जाती हैं और उनके पद दिखा सकते हैं जिनके कारण हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, सुसमाचार पर आधारित आज्ञा मान? समझ, अब समझ आया? अब समझ आया कि नहीं समझ? किसी की नहीं समझ आया?
सो आई वॉन्ट यू टू थिंक.
तो मैं चाहता हूं आप सोचें,
why did Paul say he did what he did?
मैं चाहता हूं कि अब आप सोचें क्यों करके पॉल ने कहा कि वो क्यों वो कर रहा था जो उसने किया.
And you ought to be thinking of some verses.
और अब आपको कुछ पदों को सोचना है. ठीक है,
Why did he suffer?
क्यों उसने दुख उठाया?
Why did he become weak to the weak?
क्यों वो कमजोरों के लिए कमजोर बन गया? क्यों उसने दुख उठाया? क्यों उसने जो कार्य उसने किए, क्यों उसने वो कार्य किए? पॉल उसने कुछ बातें बताई ना, मैंने ये कार्य किया इसलिए मैंने किया ये कार्य. क्यों उसने दुख उठाया? कोई कारण होगा उसको दुख उठाने का?
Paul's motives should be your motives.
जो पॉलस के उद्देश्य हैं, मनसाएं हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं, वो आपकी मनसाएं, उद्देश्य, प्रेरणा के स्रोत होने चाहिए.
So I've already given you two right there.
तो अभी मैंने आपको बता दिया दो कारण, और बता दिए दो कारण अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो.
Also take 10 minutes.
10 मिनट ले ली, फिर बताइए तीन कारण क्या है. 10 मिनट आपका समय समाप्त शुरू होता है अब.
Why did Paul suffer?
पॉलस क्यों करके उसने दुख उठाया?
Why did he pay a price?
क्यों उसने कीमत चुकाई? अब आपस में बात करते हैं, कर सकते हैं एक दूसरे से, आप बात कर सकते हैं अपने अगल बगल वालों से.